नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों के 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में लगे हुए हैं। उद्योग मंडल फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथेनॉल, मेथनॉल, बायो CNG, बायो LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, हमने अब 15 साल से ज्यादा पुराने 9 लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदूषण कर रही बसों, कारों के सड़क परिचालन पर रोक लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाइफा बंदरगाह के जरिए अडानी समूह के इजराइल में सफलता से कदम रखने का जश्न मनाने के लिए यहां मंगलवार को आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शरीक होंगे। बंदरगाह के अधिग्रहण को रणनीतिक खरीद के तौर पर देखा जा रहा है और ये देश के किसी भी क्षेत्र में संभवतः सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। इस कार्यक्रम में अडानी समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन गौतम अडानी भी शामिल होंगे। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इसराइल के गादोत समूह के संघ ने इसराइल में हाइफा बंदरगाह के 1.18 अरब डॉलर में निजीकरण के लिए पिछले वर्ष जुलाई में बोली जीती थी। खरीद की प्रक्रिया इस वर्ष 11 जनवरी को पूरी की गई, जिसके बाद से बंदरगाह के अद्यतन का कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस साझेदारी में भारतीय भागीदार अडानी की हिस्सेदारी 70% और स्थानीय साझेदार का हिस्सा 30% है। पंजाब नेशनल बैंक का दिसंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 44% गिरकर 629 करोड़ रुपए रह गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक ने 1127 रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। PNB ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि अक्टूबर-दिसंबर 2022 में उसकी कुल आय बढ़कर 25,722 करोड़ रुपए हो गई। एक साल पहले समान तिमाही में ये 22,026 करोड़ रुपए थी। संपत्ति की गुणवत्ता के मोर्चे पर भी बैंक का प्रदर्शन सुधरा है और उसकी सकल गैर निष्पादित अस्थियाँ NPA पिछले वर्ष की दिसंबर तिमाही के 12.88% से घटकर 9.76% रह गई। इसके अलावा उसका शुद्ध NPA भी पहले के 4.90% से कम होकर 3.30% रह गया। सिंगापुर की निवेशक टेमासेक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना निवेश कायम रखेगी। हालांकि अमेरिका का फॉरेंसिक शोध संस्थान अडानी समूह पर धोखाधड़ी के लिए लगातार निशाना साध रहा है। द स्ट्रेटस टाइम्स ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से कहा, टेमासेक अडानी पोर्ट्स में निवेशक बनी रहेगी। दिसंबर 2022 तक टेमासेक के प्रबंधन के तहत 496.59 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्तियां थी। टेमासेक की अपनी अनुषंगी कैमस इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अडानी पोर्ट्स में सिर्फ 1.2% से कुछ अधिक की हिस्सेदारी है। टेमासेक ने यह हिस्सेदारी 2018 में 14.7 करोड़ सिंगापुरी डॉलर में खरीदी थी। अडानी समूह अडानी विल्मर के जरिए खाद्य तेल और खाद्य कारोबार में भी है। इस क्षेत्र में उसका सिंगापुर में सूचीबद्ध विल्मर इंटरनेशनल के साथ संयुक्त उद्यम है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 10% चढ़ गया, जबकि समूह की अन्य कंपनियों के शेयरों में नुकसान था। अडानी समूह ने अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में रविवार को 413 पृष्ठ की प्रतिक्रिया जारी की थी। इसके बाद सोमवार को हिंडनबर्ग ने अपने आरोपों पर कायम रहते हुए कहा कि अडानी समूह धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद से ढक नहीं सकता। सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयर नुकसान में कारोबार कर रहे थे। BSE पर अडानी टोटल गैस का शेयर 20% टूट गया। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी 18.99%, अडानी पावर 5%, अडानी विल्मर 5% और NDTV 5% नीचे आ गया। अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी सुबह के कारोबार में 17% तक नीचे आ गई। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 10% चढ़ गया और अडानी पोर्ट्स में 10% की तेजी आई। रेज पावर इंफ्रा 9,140 करोड़ रुपए का निवेश से 1800 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेगी। कंपनी ने सोमवार को ये जानकारी दी। एक बयान के अनुसार रेज पावर इंफ्रा ने राजस्थान में अवंत गाड़े PV फोटोवोल्टिक बिजली स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। बयान के अनुसार सौर पार्क में 300-300 मेगावाट की दो परियोजनाएं और 900 मेगावाट की एक परियोजना होगी। ये समूची परियोजना देश में सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना की लागत 9,140 करोड़ रुपए अनुमानित है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि विश्व समुदाय को उन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व स्तर पर समन्वित नीतियों और कार्यों पर अधिक जोर देना चाहिए, जो परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं और केवल सीमाओं द्वारा परिभाषित नहीं होते हैं। तोमर यहां दो दिन के G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा कार्य समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ बैठक का उद्घाटन किया। तोमर ने कहा कि ये देश के नागरिकों के लिए गर्व का क्षण है कि भारत इस साल G20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।